بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياء وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دردتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے जिसकी तुम्हें इच्छा होगी, और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तुम मांग करोगे। ये अत्यंत क्षमाशील और दयावान ईश्वर की ओर से तुम्हारे आतिथ्य का साधन है। और उस व्यक्ति से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ईश्वर की ओर बुलाए, अच्छे कर्म करे और ये कहे कि निश्चित रूप से मैं उसके आज्ञाकारी बंदों में से हूँ।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज रविवार है, आबान की 23, नवंबर की 14 और रबी उसानी की 8 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट करें। सदा की भांति आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल बातें, जिसके पश्चात आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनेंगे। और अब आप समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद के सदस्यों को नियुक्त कर दिया। जनरल सलामी ने कहा कि किसी को भी ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे। अमरीकी धमकी के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली देने का क्रम आरंभ कर दिया। राष्ट्रसंघ के महासचिव ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन की समाप्ति पर कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अगले चरण के लिए देश की सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद के सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अगले 4 वर्षों के लिए सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद के सदस्यों को नियुक्त किया है। साथ ही उन्होंने पिछले सदस्यों की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने पिछले चरण के सदस्यों विशेषकर विद्वानों की प्रशंसा करते हुए, जो अगले दौर में भी अपनी गतिविधियां निभाएंगे, कहा कि वे सांस्कृतिक आक्रमण और संचार माध्यमों के मुकाबले में ढाल की भांति हैं। सर्वोच्च नेता के आदेश में आया है कि इस्लामी क्रांति 40 वर्ष गुजरने के बाद अब नई हिजरी शमसी में नए चरण में नए दृष्टिकोण के साथ सभ्यता के मूल ढांचे को अपडेट करने को जरूरी मानती है। आपने कहा कि इस परिषद से संस्कृत नामक शब्द जुड़ा हुआ है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि संस्कृत प्रत्येक मानव समाज के समस्त मूलभूत और अंतर्निहित कारणों को गति को धीमा या तेज करती है। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि प्रत्येक समाज में संस्कृत का निर्माण उसकी प्रगति और सफलता का सबसे उच्च नमूना है, जो हर प्रकार की बाध्यकारी बातों से मुक्ति दिलाती है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने आगे कहा कि देश की सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद की जिम्मेदारी आरंभ से ही देश के भीतर संस्कृति और ज्ञान की स्थिति को व्यवस्थित कराना रहा है। साथ ही उन्होंने दोनों विषयों में नीति निर्धारण और इसके जिम्मेदारों के क्रांतिकारी मूल्यों तथा लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करना रहा है।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के संरक्षक बल सिपाही पासदारान IRGC के प्रमुख ने कहा है कि समुद्र में प्रयोग होने वाली आधुनिकतम तकनीक हमारे पास है और सिपाही पासदारान किसी को भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हमारी क्षमता में विकास नहीं रुकेगा और इस संदेश को सबको जान लेना चाहिए कि हम किसी को भी अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले हमारे सैन्य संसाधनों और सैनिक जरूरतों का निर्माण दूसरे करते थे। इसका अर्थ यह है कि हमारी शक्ति का आधार दूसरों के नियंत्रण में था, परंतु ईश्वर की कृपा से इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद हमने ये तकनीक प्राप्त कर ली है और दुश्मन इस बात से भयभीत व चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र व स्वाधीन होने के लिए ज्ञान, तकनीक, शक्ति और अर्थव्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये चीजें समाज की असली पहचान हैं और ईरानी राष्ट्र के अलावा किसी को भी उसके भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई हमारे भविष्य के बारे में फैसला लेना चाहे तो हम गंभीरता से उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मनों के समस्त षड्यंत्रों व प्रतिबंधों के बावजूद आत्मविश्वास की भावना और आंतरिक संभावनाओं पर भरोसा देश के विकास का कारण बनी और ईश्वर की कृपा सर्वोच्च नेता के दिशा निर्देशन और प्रतिबद्ध युवाओं के प्रयास से बहुत से क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका के विमान वाहक युद्धपोत के ऊपर उड़ान भरने वाले ईरानी हेलीकॉप्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जबकि इसराइली मीडिया ने इस घटना को खास कवरेज दी है। इसराइल टीवी चैनल 12 ने फारस खाड़ी में ईरान के एक सैन्य हेलीकॉप्टर के अमेरिकी विमान वाहक पोत USS Essex के बहुत नज़दीक उड़ान भरने की घटना पर कहा कि ईरानी पायलटों ने अमेरिकी युद्धपोत के निकट कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर साहस का परिचय दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरानी पायलट ने अमेरिकी सैनिकों की आंखों के सामने USS Essex के ऊपर उड़ान भरी और इस घटना का वीडियो बनाकर इसका दस्तावेज तैयार कर लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर अमेरिकी युद्धपोत के काफी नजदीक उड़ान भर रहा है, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत और उस पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने हिंद महासागर और लाल सागर के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था। ईरान का मानना है कि अमेरिका की सैन्य उपस्थिति क्षेत्र में अशांति की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए अमेरिकी सैनिकों को इस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए और वाशिंगटन को दूसरे देशों में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम की पर्याप्त आपूर्ति है, इसलिए वे देश जो अभी भी ईरान से तेल खरीद रहे हैं वो इसमें कटौती कर दें। बाइडेन के इस बयान को संभावित रूप से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी और ईरान विरोधी प्रतिबंधों को हटाने के लिए फिर से शुरू होने वाली वार्ता के मार्ग में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को विदेश विभाग के लिए ज्ञापन में अमरीकी राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की है। अमरीकी सरकार को हर 6 महीने में आश्वासन देने की जरूरत होती है कि ईरान के खिलाफ उसके एक पक्षीय प्रतिबंधों के बावजूद विश्व स्तर पर तेल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। बाइडेन का कहना था कि ईरान के अलावा अन्य देशों से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति जारी है, इसीलिए ईरान से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीदारी में उल्लेखनीय कमी की जा सकती है। ओबामा प्रशासन ने 2012 में ईरान के तेल को प्रतिबंधित किया था, जिसके बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में परमाणु समझौते से बाहर निकलने का ऐलान करते हुए 2018 में ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को अधिक कड़ा कर दिया। बाइडेन ने यह बयान अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ सोमवार को होने वाली वर्चुअल मुलाकात से पहले दिया है। अमरीका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद चीन हर रोज ईरान से 5 लाख बैरल तेल खरीद रहा है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिकी धमकी के बावजूद रूस ने भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली देने का क्रम आरंभ कर दिया है। दूसरे देशों के साथ सैन्य सहयोग करने वाले विभाग के महानिदेशक दिमित्री शुगाएफ ने कहा है कि रूस की मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 को भारत के हवाले किए जाने का क्रम आरंभ हो गया है। उन्होंने दुबई में होने वाली हवाई प्रदर्शनी के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता में कहा कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को भारत को दिए जाने का सिलसिला आरंभ हो गया है और कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार भारत और रूस ने अक्टूबर 2018 को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की खरीदारी के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। रूस द्वारा भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली दी जाने की खबर ऐसी स्थिति में प्रकाशित हो रही है जब पिछले वर्षों में अमेरिकी दबाव के कारण रूस की मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीदारी का मामला चर्चा का विषय बन गया था। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कुछ समय पहले दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खतरनाक बताया था और कहा था कि इस प्रकार का कार्य किसी के हित में नहीं है। ज्ञात रहे कि अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों व सीनेटरों के विरोध के बावजूद भारत ने बारंबार घोषणा की थी कि उसे S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।
राष्ट्रसंघ के महासचिव ने कहा कि ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में हासिल होने वाली उपलब्धियों के बावजूद अब भी आपदा बाकी है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि कुछ उपलब्धियों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु सम्मेलन ग्लासगो में समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने ट्वीट किया कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में 26वीं बैठक एक समझौता है जो इस समय संसार में हितों, अंतर विरोधों और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। उनका कहना था कि ये काम पर्याप्त नहीं थे। गुटेरेस के अनुसार जलवायु परिवर्तन के साथ संघर्ष हमारे जीवन के लिए संघर्ष की भांति है जिसमें विजय प्राप्त की जानी चाहिए। जानकारों का कहना है कि यह सम्मेलन धरती के बढ़ते तापमान को घटाने की अंतिम कोशिश है। इससे पहले राष्ट्रसंघ के महासचिव ने चेतावनी दी थी कि ग्लासगो में होने वाले जलवायु सम्मेलन की विफलता की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन अगर विश्व के नेता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। याद रहे कि ब्रिटेन के ग्लासगो नगर में संयुक्त राष्ट्रसंघ का 26वां जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विश्व के कई देशों के नेताओं, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में ईरान ने जीवाश्म ईंधन के बारे में भारत के पक्ष का समर्थन किया है। सम्मेलन में शामिल ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को समझौते के मसौदे का विरोध करते हुए जीवाश्म ईंधन के बारे में मदद को लेकर भारत के पक्ष का समर्थन किया है। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन और कोयले के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास के तौर पर जाना जा रहा है। भारत के जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि विकासशील देश कोयले और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा कैसे कर सकते हैं जबकि उन्हें अभी भी अपने विकास के एजेंडे और गरीबी उन्मूलन से निपटना है।
सीरिया में अमरीकी युद्ध अपराध का खुलासा, हवाई हमले में 64 महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेना ने 2019 में सीरिया में तथाकथित दाएश के एक ठिकाने पर एक के बाद दो हवाई हमले किए थे जिसमें 64 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन घटना पर पर्दा डाल दिया गया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम जरूरतमंदों का ख्याल रखने के विषय पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सिद्दीकी खमनाई अपने संबोधन में ज़रूरतमंदों की मदद की आवश्यकता को आदर्श समाज और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की प्रतीक्षा करने वालों के लिए ज़रूरी करार दिया।
इद्दी हसन के दर इन शरायत व दर इन औज़ा हकीकतन ज़िंदगीशुन बे सख्ती काबिल गुज़रान हस्त व नमीतवानन ज़िंदगी मामूली आदी खुदशुन रो इदारे कुनन।
सर्वोच्च नेता कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके लिए इन हालात में और इन परिस्थितियों में हकीकत में जिंदगी गुजारना सख्त हो गया है और वो अपनी सामान्य जिंदगी को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं रखते। उनका कहना है कि उन लोगों को जिनके हाथ खुले हुए हैं और जिनके पास ताकत और क्षमता पाई जाती है, इस क्षेत्र में व्यापक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए।
इन सलावात शरीफ शजरत नबुव्वा मिखुनीम के वरज़ुक़नी मुबासात मन कत्तरत अलैहि मिन रिज़्क़िक बिमा फ़ज़लत अलैया मिन फ़ज़लिक बाहियतनी तहत ज़िल्लिक।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सिद्दीकी खमनाई कहते हैं कि यानी एक काम है जिसे अंजाम दिया जाना चाहिए, खास तौर पर पवित्र रमजान में जो आने वाला है। रमजान का महीना ईश्वर के मार्ग में खर्च करने का महीना है, त्याग और बलिदान का महीना है, गरीबों और वंचितों की मदद करने का महीना है। कितना अच्छा होता कि इस साल से देश में गरीबों और निर्धनों की मदद के लिए दूसरों से समरसता दिखाने और गरीब मोमिनों की मदद करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू होता, ताकि लोगों के मन में एक अच्छी याद बाकी रहे।
ما برای اینکه ارادتمون به امام زمان ثابت بشود بایستی صحنه ها و جلوه هایی از جامعه مهدوی رو خودمون به وجود بیاریم.
سروج نتا کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اپنی نشٹھا کو ثابت کریں تو ہمیں خود ہی حضرت مہدی کے آدرش سماج کے درش کو استتو میں لانا ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آدرش سماج نیائے اور ترک سنگت سماج ہے, प्रतिष्ठित समाज है, विज्ञान से संपन्न समाज है, भाईचारे और हमदर्दी से संपन्न समाज है।
इन्हों रो बायसी मो दर जिंदगी खुदमुन तहकुक बख्शीं बकदर इम्कान खुदमुन।
इन चीजों को हमें अपनी जिंदगी में व्यवहारिक बनाना चाहिए अपनी क्षमताओं और ताकत के अनुसार। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम, स्वीकार कीजिए। परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी को लेकर अब अमेरिका के भीतर भी आवाजें उठने लगी हैं। जर्मनी की फुटबॉल टीम के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार को चेतावनी। दोस्तों, इन मुद्दों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध रिपब्लिकन सीनेटर लैंडसी ग्रहम ने बाइडेन की विदेश नीति को जिमी कार्टर की विदेश नीति से भी कमजोर बताया है। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
सर्वेक्षण कहते हैं कि उनका हनीमून खत्म हो गया है और डेमोक्रेट्स अगले चुनाव के लिए नए विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता वही सर्वेक्षण कह रहे हैं कि उनकी उपराष्ट्रपति की लोकप्रियता की स्थिति उनसे बेहतर नहीं है और लगातार घटती जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रसिद्ध सेनेटर लिंडसी ग्राहम भी, जिनकी दोस्ती बाइडेन से बहुत गहरी है, दूसरों की तरह अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के तरीके पर नाराज हैं और उन्होंने बाइडेन की विदेश नीति को कार्टर की विदेश नीति से भी कमजोर करार दिया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी के विरोधियों और समर्थकों की आवाज पहले से ज्यादा सुनाई दे रही है, जबकि डेमोक्रेट्स को कांग्रेस के हाथ से निकल जाने की चिंता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और शोधकर्ता टेरेन फेवेक का कहना है कि
एवरी सिंगल कंट्री हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट यूएस इंपीरियलिज्म एंड दिस ऑफ कोर्स इंक्लूड्स ईरान।
दुनिया के हर देश को यह हक है कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद से मुकाबले में खुद की रक्षा करे, इसमें ईरान भी शामिल है। अगर अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपनी परमाणु तकनीक को पूरा करे तो उसे चाहिए कि वो ईरान को संतोषजनक विश्वास दिलाए और तेहरान के लिए कोई भी खतरा पैदा न करे। अमेरिका के आधारभूत ढांचे की रक्षा के लिए बाइडेन की ओर से पेश किए गए सुझाव का दोनों पार्टियों ने समर्थन किया, जिसने उम्मीद की किरण जगा दी है। सीएनएन के अनुसार अर्थव्यवस्था में हरकत,
प्राइसेस सर्जिंग मोर देन दे हैव इन 30 इयर्स,
30 साल में इतनी ज्यादा महंगाई। लेकिन इस महंगाई पर लगाम लग सकता है अगर कोरोना इसकी इजाजत दे।
1, 2, 3,
वास्तव में पिछले एक सप्ताह के दौरान 24 घंटे में औसतन 1000 से अधिक लोगों की मौत ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है। इसका जिम्मेदार उन लोगों को करार दिया जा रहा है जो किसी भी वजह से वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। कामरान नजफजादे, IRIB न्यूज, न्यूयॉर्क।
आजकल यूरोप में कोरोना फिर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसने जर्मन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों को भी संक्रमित कर दिया। विस्तार से बता रहे हैं सैयद मीसम।
आजकल फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जहां जर्मन टीम चर्चा में है,
der positive corona test,
वहीं कोरोना की वजह से भी ये खबरों में है।
der fall Süleyman,
निकोलस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें और उनके 4 साथियों को जो उनके संपर्क में थे क्वारंटीन कर दिया गया है।
Die dann kommen, ja nicht immer vorhersehbar.
ये ऐसी घटना है कि जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे उम्मीद है कि फिर से 5 खिलाड़ियों को कोरोना की वजह से क्वारंटीन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जर्मनी में खिलाड़ियों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है। जैसा कि बायरन के राष्ट्रीय खिलाड़ी कीमिश का कहना है कि वो वैक्सीन की डोज नहीं लेंगे। इस बीच राज्यों ने विभिन्न नियम बनाए हैं। कुछ स्टेडियमों में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना काफी है, लेकिन कुछ अन्य में स्वास्थ्य रिपोर्ट या वैक्सीन कार्ड का होना जरूरी है। ऐसे स्टेडियम भी हैं जहां स्टैंड में दर्शकों के लिए अलग अलग कानून हैं। कई क्लब ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी स्टेडियमों में आसानी से ऐसा नहीं हो सकता कि वहां कोरोना से पहले की तरह बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रवेश दिया जाए। आजकल जर्मनी समेत यूरोप में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आया है और पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसी वजह से जर्मनी के स्टेडियमों में दर्शकों की संख्या सीमित की जा सकती है। अमीर शुजाई, IRIB, बर्लिन।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
اور شروتاؤں اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارت نینتی جموں و کشمیر کی پورو مکھی منتری محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ادھیکار لے کر رہیں گے۔ سری نگر سے سپت محمد حسن کی رپورٹ۔
جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی مہیلا ادھیکش محبوبہ مفتی، جو جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھی منتری بھی ہے، نے کہا ہے کہ نئی دہلی کشمیر کے حوالے سے جو اپروچ اختیار کیا ہے وہ سفل نہیں ہو سکتا ہے۔ جموں پرانت میں ایک بڑی جن سبھا کو سمبوجت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نئی دہلی سے یہ بنتی کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
واجپئی جی وزیر اعظم تھے، مفتی صاحب نے بات چیت شروع کروائی، پاکستان کے ساتھ بھی بات ہوئی، ہمارے راستے کھلے، امن آیا، ملیٹنسی کم ہوئی، ترقی شروع ہوگی، سڑکیں بننا شروع ہو گئے، کالج بننا شروع ہو گئے۔ مگر میں آج آئی ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے ظلم اس بربریت کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے۔ میری آواز بہت کمزور ہے، جب تک میری آواز کے ساتھ آپ اپنی آواز نہیں ملائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پچھلے دو ورشوں کے دوران طاقت کا بھرپور اپیوگ عمل میں لایا گیا پرنتو کچھ لابھ حاصل نہیں ہوا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں اب بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ورش 2019 میں جو گھٹنا گھٹی اور 5 اگست کو جو ہمارے حقوق چھینے گئے وہ بھارت کو کسی بھی حال میں واپس کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ حقوق واپس نہیں کیے گئے تو اس کا خمیازہ نئی دہلی کو اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی طاقت کے بل پر کشمیریوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، پرنتو میں یہ بات بل دے کر کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس میں سفل نہیں ہوں گے۔ سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم سنا۔ کاریکرم آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں آپ اپنے وچاروں سے ہمیں اوشی اوگت کروائیے گا۔ سبھا کے اس بھاگ میں اب ہم آپ کو ساپتاہک کاریکرم سنوائیں گے آج کل، لیکن اس سے پہلے پیش ہے ایک انیہ ساپتاہک کاریکرم، قرآن ایشوری چمتکار۔
واستو میں یہ قرآن وہ مارگ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
پری شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 102 کی تلاوت سنیں۔
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔
کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے استھان پر میرے بندوں کو اپنا ابھیبھاوک بنا لیں گے؟ نشچت روپ سے ہم نے نرک کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
پچھلے کارکرم میں کافروں تتھا نرک واسیوں کی کچھ وشیشتاؤں کا ورنن کیا گیا تھا۔ یہ آیت اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا جن لوگوں نے ستیہ کا انکار کیا ہے اور ستیہ کو دیکھنے و سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یدی وہ ایشور کے استھان پر اس کے بندوں کی شرن میں چلے جائیں گے تو وہ انہیں مکتی پردان کر دیں گے اور ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیں گے۔
انہوں نے کس ترک سے ایشور کو چھوڑ کر اس کی رچناؤں کی اپاسنا آرمبھ کر دی ہے؟ جس دن وہ یہ دیکھیں گے کہ ایشور کے اتیرکت کوئی انیہ سرکشت شرن نہیں ہے، اس دن وہ سوئم کو کتنا دھکاریں گے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ایشور تتھا پرلے کے انکار کے لیے کافروں کے پاس کوئی صحیح ترک نہیں ہے اور انہوں نے کیول اپنے وچاروں اور کلپناؤں کے آدھار پر اس مارک کا چین کیا ہے۔
کفر کیول ایشور کے انکار کو نہیں کہتے بلکہ ایشور کے اتیرکت کسی انیہ کو اپنا سوامی سمجھنا بھی ایک پرکار کا کفر ہی ہے، کیونکہ ایشور کے اتیرکت کسی انیہ کو اس کے ستھان پر نہیں رکھا جا سکتا۔
آئیے اب سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 کی تلاوت سنیں۔
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔
ہے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس بات کی سوچنا دوں کہ کون سب سے ادھک گھاٹا اٹھانے والا ہے؟ وہ لوگ سانسارک جیون میں جن کے پریاس نرتھک ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑے بھلے کرم کر رہے ہیں۔
یہ آیتیں ان لوگوں کی اور سنکیت کرتی ہیں جو اس وچار میں رہتے ہیں کہ اس سنسار میں ان کے کارے اچھے اور بھلے رہے ہیں، چاہے وہ آسمانی کتاب والے ہوں جو غلط دھارناؤں اور اندھ وشواسوں میں گرست ہو گئے ہیں، اتھوا وہ مسلمان ہوں جو صحیح مارگ سے وچلت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اکشم لوگوں کی ابھیبھاوکتا کو سویکار کر لیا ہے۔
منشیہ کے سمکش سدیو جو خطرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کاریوں کو اچھا سمجھنے لگے اور یہ سوچے کہ اسے مکتی ایوم کلیان پراپت ہوگا، کنتو جب پردے ہٹ جائیں گے تو یہ سپشٹ ہو جائے گا کہ وہ نشچیتنا ایوم گھمنڈ میں گرست تھا اور اس کے سبھی پریاس و کرم اکارت ہو گئے ہیں۔
اسپشٹ ہے کہ اس پرکار کے لوگوں کو بھاری گھاٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ سنسار تتھا سانسارک آنندوں سے بھی ونچت رہے ہیں اور پرلے میں بھی انہیں سوارگ تتھا استھائی انوکمپائیں پراپت نہیں ہوئی ہیں۔
یہ آیتیں منشک کو غلط دھارناؤں اور ستے کے پرتی نشچیتنا کے خطروں کی اور سے سچیت کرتی ہیں اور اسے ساودھان کرتی ہیں کہ نرادھار ایوم کھوکھلے وچاروں و کلپناؤں میں گرست نہ ہو تتھا بدھی و ایشوریہ سندیش وہی پر بھروسہ کیے بنا کوئی کاریہ نہ کرے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ادھک پریاس سے منشیہ کو مکتی پراپت نہیں ہوتی۔ مہتوپورن بات مارگ کی صحیح پہچان تتھا بھلے کرم کرنے میں ایشوریہ پریرناؤں کا ہونا ہے۔
ہمیں کلپناؤں پر وشواس کرنے کے استھان پر ستیہ کو سویکار کرنے والا بننا چاہیے۔ ہمیں اپنی کلپناؤں پر بہت ادھک بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کی کافی سمبھاونا ہے کہ ہماری کلپنائیں ستیہ کے انوسار نہ ہوں۔
آئیے اب سورہ کہف کی آیت نمبر 105 اور 106 کی تلاوت سنیں۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنہار کی نشانیوں اور پرلے میں اس سے بھینٹ کو جھٹلایا تو ان کے سارے کرم اکارت ہو گئے، تو ہم پرلے میں ان کے لیے کوئی تولکا نہیں استھاپت کریں گے۔ انہوں نے جو کفر اپنایا اور میری نشانیوں تتھا پیغمبروں کا جو پریہاس کیا اس کے لیے ان کا بدلہ نرک ہے۔
یہ آیتیں ان لوگوں کا انجام نرک بتاتی ہیں جن کی آستھا یا کرم یا دونوں ہی میں سمسیائیں تھیں، کیونکہ اس پرکار کے لوگوں کے کارے ودت روپ سے اور سوئم ان کی درشٹی میں تو بھلے تھے کنتو پرلے میں ایشور کے حساب کتاب کی درشٹی سے ان کا کوئی مہتو نہیں ہے، اتا اس بات کی کوئی آوشکتا ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے۔
کرموں کا اکارت یا تباہ ہونا ایک ایسا خطرہ ہے جو سدیو بھلے کرم کرنے والوں کے سمکش موجود رہتا ہے۔ कुफ्र और सत्य का इनकार कर्मों की बर्बादी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। उस व्यक्ति की भांति जिसने एक लंबे समय तक अपने मालिक के पास काम किया किंतु अंतिम समय में उसे बुरा भला कहकर उससे अलग हो गया। उसका यही बुरा व्यवहार उसकी दसियों वर्ष की सेवा को बर्बाद कर देता है और उसके लिए कुछ बाकी नहीं बचता।
इन आयतों से हमने सीखा कि कर्मों के विदित रूप को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संभव है कि वे हमें बहुत बड़े और सुंदर दिखाई दें किंतु भीतर से खोखले और महत्वहीन हों, भीतर से खाली ढोल की भांति जिसकी आवाज बहुत ऊंची और कानों को बुरी लगने वाली होती है।
ईश्वर के इनकार और पैगंबरों व ईश्वरीय निशानियों के परिहास का परिणाम सभी अच्छे कर्मों के बर्बाद होने के रूप में निकलता है।
मनुष्य का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि संसार में उसका अंत कैसा होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और रविस जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में इसराइल की अंदरूनी कमजोरी और भीतरी बिखराव के बारे में बात करेंगे। इसराइल अन्य देशों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है, नए नए विवाद पैदा कर रहा है। यही नहीं, वो ईरान पर हमले की तैयारी की बातें भी खूब करता है, मगर हालात ये हैं कि अवैध ज़ायोनी शासन आंतरिक तौर पर बेहद गंभीर संकटों से जूझ रहा है। पिछले कार्यक्रम में हमने इसराइल के सामाजिक संकट का जायजा लिया और आज के कार्यक्रम में भी उसके सामरिक व सुरक्षा संकटों पर नजर डालेंगे।
इसराइल में हालिया महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसका बहुचर्चित मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सवालों से घेरे में आ गया और यह हकीकत सामने आई कि यह सिस्टम नकारा है। फरवरी 2021 में हैफा में एक पेट्रोकेमिकल कारखाने में धमाका हो गया, जबकि अप्रैल 2021 में रमला शहर में इसराइल के मिसाइल कारखानों में धमाका हो गया। सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि फरवरी में इसराइल के परमाणु केंद्र डिमोन के बहुत करीब मिसाइल गिरा, जो सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किया गया था। हालिया 12 दिवसीय गजा युद्ध में कई मिसाइल आयरन डोम को भेद कर इसराइल के भीतर जा गिरे।
पश्चिमी देशों के मीडिया ने इसराइल के भीतर होने वाली इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दिखाई और इसे इसराइल की कमजोरी और आयरन डोम की नाकामी का चिन्ह करार दिया। इंडिपेंडेंट अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में इलाका विवाद की कगार पर शीर्षक के तहत लिखा है कि इसराइली परमाणु केंद्र के करीब गिरने वाला सीरियाई मिसाइल साबित करता है कि इसराइल कमजोर पड़ चुका है।
मिडल ईस्ट मॉनिटर वेबसाइट ने इस घटना को इसराइल के लिए बहुत गहरा संदेश ठहराया और लिखा कि ये बहस तो अलग ही है कि ये मिसाइल किस गुट ने फायर किया। इस घटना से इसराइल का विशाल आयरन डोम सिस्टम सवालों में आ गया है। इस घटना से इसराइल की पूरी सामरिक क्षमता ही संदेह के दायरे में आ गई। जिसका इसराइल हालिया दशकों में हमेशा ढिंडोरा पीटता रहा है। इसराइली अधिकारियों को अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मजबूत कहा जाने वाला उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान, सीरिया और हिजबुल्ला के हमलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है।
दोस्तों, फिलिस्तीनियों ने इन्हीं तथ्यों के मद्देनज़र इसराइल के आयरन डोम का मजाक उड़ाया और इसे सिल्क डोम कहना शुरू कर दिया है। इसराइल की बेबसी तो 12 दिवसीय गजा युद्ध के दौरान इतनी जगजाहिर हो गई कि इसको छिपाना असंभव हो गया। ये जंग गत मई महीने में हुई। 12 दिन के भीतर इसराइल संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थ की खोजने पर मजबूर हो गया। टीकाकार सेंट फ्रांटजेट मैन ने फॉरेन पॉलिसी में छपने वाले अपने लेख में लिखा कि इसराइल और फिलिस्तीनी संगठनों के बीच होने वाली हालिया जंग इस अर्थ में बिल्कुल अलग थी कि हमास संगठन ने इस बार बिल्कुल नए प्रकार के मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि हमास का मुकाबला कर पाने में इसराइल की बेबसी साफ झलकने लगी थी। हमास और उसके समर्थक मानते हैं कि ये जंग उनकी बहुत बड़ी विजय है। हमास ने अपने मिसाइलों से इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। शायद हमास की कोशिश थी कि आयरन डोम सिस्टम को आजमाए या उसे ध्वस्त कर दे। इसीलिए कुछ मिनट के भीतर ही हमास ने 140 से अधिक मिसाइल फायर कर डाले, जिससे तेल अवीव, अशदूद और अस्कलान जैसे शहर के आसमान पर हर तरफ आग का गोला नजर आने लगा।
कनाडा की ब्राक यूनिवर्सिटी से एक शिक्षक माइक आर्मस्ट्रांग ने ब्रिटानी मैगजीन कन्वर्सेशन में अपने लेख में लिखा कि इसराइल के रक्षा सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत से शुरू में हमारी ये सोच थी कि इन दिनों होने वाली झड़पें 2014 की जंग की तरह होंगी, लेकिन नजर आया कि गजा पट्टी के संगठनों ने अपनी मिसाइल ताकत और जंगी टैक्टिक में बहुत विस्तार कर लिया है। इस स्थिति से 2008 के हालात की याद आ गई, जब इसराइल गजा से फायर किए जाने वाले मिसाइलों के सामने असहाय था। आर्मस्ट्रांग का कहना है कि सबसे बड़ा बदलाव ये नजर आया कि बड़ी संख्या में मिसाइल फायर किए गए। जंग शुरू हुई तो आरंभिक 24 घंटों के भीतर फिलिस्तीनी संगठनों ने 470 से अधिक मिसाइल इसराइल पर फायर कर डाले। उन्होंने औसतन रोजाना 407 मिसाइल फायर किए। इसे वर्ष 2012 में 316 रॉकेट और वर्ष 2014 में 192 रॉकेट फायर करने का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल के हमले में मिसाइल हमलों में बड़ा समन्वय नजर आया।
सामरिक मामलों के इस विशेषज्ञ का कहना है कि फिलिस्तीनी संगठनों के मिसाइलों के निशाने अब सटीक हो गए हैं। इसराइली इलाकों पर फायर किए जाने वाले मिसाइलों में 50% ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। ये 2012 की तुलना में 22% के सुधार की निशानी है, जबकि 2014 की तुलना में 18% का सुधार हुआ है। इससे पहले की झड़पों में इसराइल की दक्षिणी बस्तियों पर अधिकतर हमले होते थे, मगर इस बार मध्यवर्ती इलाके तेल अवीव पर हमले हुए हैं।
बारह दिवसीय गजा युद्ध ने साबित कर दिया कि आयरन डोम में बहुत सारी कमजोरियां हैं और इसका जिक्र इसराइल सैन्य कमांडरों ने भी किया। इस जंग को 4 महीने बीत जाने के बाद इसराइली सेना के एयर डिफेंस सिस्टम के कमांडर गिलआद बीरान ने कहा कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसी कमियां हैं कि वो सारे खतरों से निपटने में सक्षम नहीं है और सारे इलाकों को कवर नहीं कर पा रहा है। जबकि इस जंग में इसराइल का मुकाबला फिलिस्तीनी गुटों से था, जो सैनिक ताकत की दृष्टि से हिजबुल्ला, लेबनान जैसे नहीं हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की तो खैर बात ही अलग है।
सामरिक दृष्टि से इसराइल एक और कमजोरी इसराइली सैनिकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मीडिया की रिपोर्टें बताती हैं कि मनोचिकित्सकों की सहायता लेने वाले इसराइली सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसराइली सैनिकों के भीतर मोर्चे पर जाने का भय बैठ गया है और ये उनके लिए डरावना सपना बन गया है। कुछ तो मिलिट्री सर्विस छोड़कर भाग जाते हैं। इसराइली अखबार हारेट्स के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ने लिखा है कि इस समय इसराइली थल सेना बड़े गंभीर संकट से जूझ रही है, इसलिए इसराइल के लिए कोई भी जमीनी युद्ध बहुत डरावना सपना है। इसराइल की कोशिश होती है कि जमीनी लड़ाई से दूर रहा जाए, क्योंकि इस तरह की लड़ाई में उसे बड़ा नुकसान पहुंच जाता है।
हिब्रू भाषा के अखबार मारिव ने सन 2020 में एक रिपोर्ट में लिखा कि मानसिक परेशानियों के कारण सेना की नौकरी छोड़ने वाले इसराइली सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसमें 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन सैनिकों की संख्या 4,500 तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले ये संख्या 3,500 थी। अखबार ने लिखा कि इनमें आधी संख्या हरिदी यहूदियों की है, जो सेना की नौकरी के विरोधी हैं। इसराइली सेना ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसके सैनिकों के भीतर मनोरोग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसराइली सैनिकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होने का एक कारण फिलिस्तीनी संगठनों से उसकी बार बार जंगे और इसराइल पर कारगर हमले करने की फिलिस्तीनी संगठनों की क्षमता में विस्तार है।
इसराइली सैनिकों के लिए जो हालात पैदा हुए उससे इसराइल के भीतर मिलिट्री विभाग की विश्वसनीयता कम हुई है। लोगों में सेना की नौकरी की दिलचस्पी कम हो गई है। यहाँ तक कि अनिवार्य मिलिट्री सेवा के लिए भी लोग तैयार नहीं होते, जो सीमित समय की होती है। अलमयादीन टीवी चैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि शुरू में जो यहूद पलायन करके फिलिस्तीन में आ बसे थे, उनमें पवित्र धरती की रक्षक के नाम से जाने वाली इसराइली सेना में नौकरी करने की रुचि थी। उस समय सेना के भीतर कामयाब राजनेताओं का भी प्रशिक्षण होता था और बड़े राजनीतिक पद पाने के लिए सेना की नौकरी का रिकॉर्ड मददगार माना जाता था। उस जमाने में सेना में काम करना इसराइल के भीतर बड़े गर्व की बात मानी जाती थी, मगर अब जो हालात हैं बिल्कुल अलग हैं। लोग सेना से भाग निकलने की तरकीब खोज रहे हैं। वैसे सेना की नौकरी से भाग जाना नई बात नहीं है। पिछले 40 साल में ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं हुई, बल्कि इसमें लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1980 में इसकी दर 12% थी, जो 2020 में 32% हो गई है।
इसराइल के सामरिक खतरों में एक बड़ा खतरा इंटेलिजेंस के विभाग से संबंधित है, जो हालिया महीनों में सामने आया है। गत जुलाई महीने में बिन गुरियन एयरपोर्ट के पास आग लग जाना, इसी तरह 6 फिलिस्तीनी कैदियों का इसराइली जेल के भीतर से सुरंग खोदकर भाग निकलना, ये वो घटनाएं हैं जो इंटेलिजेंस की सतह पर इसराइल की कमजोरियों को चिन्हित करती हैं। हालांकि जेल से भागने वाले 6 फिलिस्तीनी कैदियों को इसराइल ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे पहले ही इसराइल के भीतर जनमत ने यह निष्कर्ष तो निकाल ही लिया कि सुरक्षा और इंटेलिजेंस की दृष्टि से इसराइल पर कारगर वार करना संभव हो गया है। इस बात को तो इसराइली अखबार ह्यूम ने भी स्वीकार किया है। इस अखबार ने लिखा कि गिरफ्तारी के समय मुस्कुराते हुए फिलिस्तीनी कैदियों की तस्वीरें इसराइल की पराजय को हमेशा के लिए दर्ज कर देने वाली घटना है। इस पराजय के लिए इसराइल की जेलों के कैदियों पर जिम्मेदारी जाती है।
एक अन्य विषय यह है कि अलजलबुल जेल से फिलिस्तीनी कैदियों के भाग निकलने की घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी उन्होंने महीनों पहले योजनाबंदी की, जिसकी इसराइली एजेंसियों को भनक तक नहीं लग पाई। कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी से इसराइल की इज्जत तो वापस नहीं आई, लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि इसराइल की अक्षमता और बेबसी का सबको पता चल गया। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروع ابھی آپ سن رہے تھے کاریہ آج کل, اور اب سمے مکھ سماچاروں کے سارانش کا. اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے اگلے چرن کے لیے دیش کی سانسکرتک کرانتی کے اچھ پریشد کے سدسوں کو نیوکت کر دیا ہے. ایران کی اسلامی کرانتی کے سنرکشک بل سپاہی پاسداران آئی آر جی سی کے پرمکھ نے کہا ہے کہ سمندر میں پریوگ ہونے والی آدھنکتم تکنیک ہمارے پاس ہے, اور سپاہی پاسداران کسی کو بھی دیش کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کی انومتی نہیں دے گا. میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہماری کھمتا میں وکاس نہیں رکے گا, اور اس سندیش کو سب کو جان لینا چاہیے کہ کسی کو بھی اس دیش کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کی انومتی نہیں دیں گے. امریکہ کے ویمان واہک یدھ پوت کے اوپر اڑان بھرنے والے ایرانی ہیلی کاپٹر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے, جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اس گھٹنا کو خاص کوریج دیا ہے. امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں پٹرولیم کی پریاپت آپورتی ہے, اس لیے ودیش جو ابھی بھی ایران سے تیل خرید رہے ہیں وہ اس میں کٹوتی کر دیں. امریکی دھمکی کے باوجود روس نے بھارت کو ایس 400 میزائل رکشا پرالی دینے کا کرم آرمبھ کر دیا ہے. راشٹر سنگھ کے مہاسچیو نے کہا کہ گلاسگو جلوایو سمیلن میں حاصل ہونے والی اپلبدھیوں کے باوجود ابھی بھی آپدا باقی ہے. شوتو ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے تھے. ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو آوشیہ پسند آیا ہوگا. پتر ویوہار کے لیے ہماری پتہ نوٹ کر لیں, ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir. جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi. تو شوتو اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے. شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں. خدا حافظ.